अच्छा, फन तलाका, तो वो दोनों चल दिए, कौन दोनों? मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन सॉरी खदिर अलैहिस्सलाम। अच्छा, यूशा कहाँ गए? अब बाज मुफसरीन कहते हैं कि उनका जिक्र इसलिए नहीं कि मेन कैरेक्टर्स ये हैं और ये चले तो वो तो बस वैसे ही पीछे थे ना, उनकी तो नहीं है कहानी, लेकिन बाज कहते हैं कि नहीं, उनको वहीं पे छोड़ दिया और ये दोनों आगे गए, क्योंकि इन्होंने उनसे सीखना था ना, तो उनको वहां पे छोड़ा उन्होंने और ये आगे चल दिए। अच्छा, हत्ता इदा रकिबा फिस सफीनती, यहां तक कि दोनों सवार हो गए कश्ती में। तो कश्ती में कैसे सवार हो गए? अब ये देखे ना, वो समुद्र के पास है, आपको पता है हम बात कर रहे थे अभी कि वो जा रहे थे और फिर वो मछली समुद्र के अंदर चली गई और फिर ऐसे सब हुआ, तो इसका मतलब समुद्र के पास है, वहीं पे उनको ये मिले थे। अब दोनों चलना शुरू गए, अब ये इल्म का सफर उनको, जिसको रहला कहते हैं, इल्म का सफर उनका शुरू हो गया। अब चलते जा रहे हैं तो करीब से एक कश्ती गुजरती है, तो इन्होंने उन कश्ती वालों से कहा कि आप हमें कश्ती में सवार कर लें, पार करा दें। उन लोगों ने खदिर अलैहि सलाम को पहचान लिया, ये आता है कि पहचान लिया कि वो ये बड़े कोई नेक बुजुर्ग हस्ती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपको बगैर कराया लिए तो कश्ती में सवार करते हैं। जब वो कश्ती में सवार हो गए तो रिवायात में आता है कि एक असफोर चिड़िया एक आके कश्ती के उस पे बैठ गई ना, उसकी साइड पे कश्ती के, तो खदीर अलैह सलाम ने मूसा अलैह सलाम को फरमाया कि ऐ मूसा, अभी गौर से सुने, ऐ मूसा, मेरा और तुम्हारा इल्म मिला के भी अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में इतना नहीं है जितना इस चिड़िया की चोंच में जितना पानी है समुंदर के मुकाबले में, यानी मेरा और तुम्हारा इल्म मिला के भी इतना नहीं है। ये जो ड्रॉप इस चिड़िया ने समुंदर से लिया, उसकी चोंच में जो ड्रॉप ऑफ वाटर है, ये है, ये भी नहीं है, इतना भी नहीं है मेरा और तुम्हारा इल्म। कौन लोग कह रहे हैं? कैन यू इमेजिन, कौन लोग कह रहे हैं? हजरत अलैहि सलाम और मूसा अलैहि सलाम, इतने बड़े पैगंबर और वो भी कितनी बड़ी हस्ती इल्म वाली, और वो दोनों का मिला के भी नहीं इतना, और हम आज अपने इल्म को कितना समझते हैं और सोचते हैं कि हमें सारी बातें इल्म की, हमें हिकमतें समझ आनी चाहिए, ये समझ आना चाहिए। हमें कैसे समझ आ सकता है अगर मूसा अलैहिस्सलाम और खदीर अलैहिस्सलाम का इल्म इतना कम है कि इतना भी नहीं है जितना ये ड्रॉप ऑफ वाटर है समंदर के मुकाबले में। ये उन्होंने तशबीह देके अंदाजा दिलाया कि अल्लाह ताला का इल्म कितना वसी है और हमारा इल्म कितना कम है, दोनों का मिला के भी कितना कम है। तो कहला, उसने कहा, अच्छा फिर सफीनती खारा कहा, तो उसने फाड़ दिया उसको। अच्छा, अब ये जो थे ना गरीब से कोई लोग थे, मछेरे थे, अब उन्होंने एक तो फ्री के अंदर इनको बिठा लिया अपनी कश्ती, तो अब खजर अलैह सलाम गए और जाके उन्होंने कश्ती कश्ती में एक तख्ता उखेड़ दिया और कश्ती में सुराख कर दिया। तो मूसा अलैह सलाम तो बड़े परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। कहला खरक था ले तुगरी का आला, आपने इसको फाड़ दिया कश्ती को, ताकि सारे इसके रहने वाले यानी जो इसके अंदर सवार है लोग वो सारे डूब जाएं। लकत जी तशई अन इमरा, आपने तो बहुत भारी काम किया यार, ने क्या कर दिया? उन्होंने सिर्फ कहने के बाद रुक नहीं गए, और ये सवाल नहीं था, ये एक यानी तराज था कि इस चीज को आपने, जिन लोगों ने हमारे साथ एहसान किया वो मुफ्त में हमें बिठाया, आप बजाय इसके उनके एहसानमंद होने के आप ये कर रहे हैं। उनको ये लगा कि ये तो जुल्म है, और जाहिर है अमर बिल मारूफ व नहिल मुनकर का जो फरीजा है, हमें भी कहा गया है कि हम नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें, तो कहाँ वो अल्लाह के पैगंबर कहाँ चुप करके बैठ सकते थे कि उन्होंने एक बुराई देख रहे हैं, कि जब आपके साथ कोई भलाई कर रहा है आप उसकी उल्टा उसका नुकसान कर रहे हैं, और किस बात पे कर रहे हैं, और वैसे भी सब डूब जाएंगे, तो उनकी तरफ से तो एक जेन्युइन बात थी ना। और ये नहीं कहते मैं डूब जाऊंगा या आप डूब जाएंगे, हम इतनी बड़ी शख्सियत हैं तो हम डूब जाएंगे, नहीं ये लोग डूब जाएंगे जो यहाँ पे। से पता चलता है जो पैगंबर होता है ना, इतना खैर ख्वाह होता है इंसानियत का, उसको लोगों का दर्द होता है। अल्लाह अकबर। काला अलम अकुल इन्नक लन तस्तती माया सबरा, फरमाया मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सबर नहीं कर सकोगे। ये उन्होंने एक वार्निंग दी। फर्स्ट रेड टिकट, ये तो आपको, आपके साथ पहले ही मेरी बात हो चुकी है। काला ला तो आखिज़नी बीमा नसीत, उन फौरन मूसा अलैहिस्सलाम को रियलाइज हुआ क्योंकि भूल गए थे वो। आपसे सलम ने फरमाया जो पहली गलती थी ना वो उन्होंने भूल के की थी। ला तो आखिज़नी बीमा नसीत, आप मुझे री इसके ऊपर पकड़ ना कीजिए जो मैं भूल जाऊं, मैं भूल गया था। इससे यहाँ पे पता चलता है कि वो अपनी तरफ से एक एक्सक्यूज दे रहे हैं, एक माफी मांग रहे हैं कि मेरे से भूल चूक हो गई। वला तुरहकनी फी मिन अमरी उसरा, और ना ही मुझ पर छा जाए मेरे मामले में तंगी के साथ में, यानी मेरे साथ सख्ती ना आप करें, मुझसे नाराज ना हो आप। तो अब वो नहीं नाराज होते और उनको माफ कर देते। अब यहाँ पे देखें उनकी भी आला जर्फी है खदीर अलैह सलाम की, कि अभी उन्होंने कमिटमेंट की है मूसा अलैह सलाम ने, और जाते ही कमिटमेंट तोड़ दी, जाते ही अपनी बात को उससे फिर गए। अभी तो आपने कहा कि सबर करो, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने आगे से कोई गुस्सा नहीं किया, बस ये कहा कि मैंने आपको कहा नहीं था आप नहीं सबर कर सकेंगे। अब ये जो इन्होंने किया था ना, ये वाकई एक भूल थी। और जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे खदीर अलैह सलाम ने उनकी भूल को माफ कर दिया, पीछे मूसा अलैह सलाम ने यूशा अलैह सलाम की भूल को माफ कर दिया, तो हमें भी किसी की भी भूल चूक कोई वाकई जेनवनली भूल गया है ना तो उसको माफ कर देना चाहिए। फन ताला का, फिर वो दोनों चल पड़े। इसका मतलब उन्होंने माफ किया था तो चले ना दोनों, तो फिर दोनों चल पड़े। हत्ता इदा लकिया गुलामन फकतला, हत्ता के वो दोनों मिले एक बच्चे से और उसने कत्ल कर दिया उसको। अब कहते हैं कि वो दोनों जा रहे थे तो रास्ते के अंदर उन्होंने देखा कि एक बच्चा है जो खेल कूद रहा है, और हज़रत अलैहि सलाम ने उसको पकड़ के उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसको मार दिया। तो अब ये तो एक बहुत ही बड़ी बात हो गई कि सर पकड़ा है और इस तरह कर दिया, और बच्चे ने तो बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, उसी वक्त उसका दम निकल गया, बहुत हो गया। मूसा अलैहि सलाम तो घबरा गए, वो फौरन उन्हें कहा कतलता नफ्सन ज़किया तुम बेगैरी नफ्स, आपने कत्ल कर दिया एक जान को, एक मासूम जान को बगैर नफ्स के। बगैर जान के मतलब क्या, यानी बगैर किसी की सास के, यानी उसने कौन सा किसी को कत्ल किया कि उसके बदले में इसको कत्ल किया जाए, तब तो ठीक है, कत्ल का बदला कत्ल होता था, उनकी शरीयत में भी यही था ना। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, आपने बच्चे को नाहक मार दिया। लकद जी तशे अनुकरा, ये तो आपने बहुत ही काबिले नफरत बात की है, ये तो बहुत ही मुनकर बात हो गई, बहुत ही बड़ी बात हो गई, हॉरेबल बात हो गई। अब देखे ना ये वाले जो बात थी ना, ये तो उनको भूला नहीं था, लेकिन अब वो नहीं बर्दाश्त कर सके कि ये हो क्या गया। तो उस पे उन्होंने आगे से जवाब दिया, कौला अलम अकुल लक इन्नक लन तस्तुतिया माया सबरा। इस दफा उन्होंने क्या फरमाया, अलम अकुल लक, पहले क्या कहा था अलम अकुल इन्नक लन तस्तिया, अब लक भी आ गया बीच में। मैंने आपसे कहा नहीं था, आपसे कहा था ना मैंने कि नहीं आप सबर कर सकेंगे इसमें। तो अब उनकी बात में ज्यादा शिद्दत आप देखेंगे, और यही सबर तो उन्होंने पहले ही कहा था कि आप नहीं कर सकेंगे, और इस पे ही तो उन्होंने कहा था मैं कर लूंगा सबर, इसकी शर्त ही ये थी कि आपने सबर करना है, मुझसे कोई सवाल नहीं करना, कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं पूछना, और वो ही कर रहे हैं। कौला इन साल तो कान शे इबादा फला तो साहिब नहीं, मूसा अलैहि सलाम तो अब शर्मिंदा हो गए कि अब ये मैंने क्या कर दिया। अब उन्होंने कहा कि अगर अब मैं आपसे कोई सवाल करूं तो आप बेशक ना मुझे अपने साथ रखना, फिर आप माजूर हैं। कद बलगता मिल्ला दुनिया उजरा, फिर आप मेरी तरफ से उजर आपको है, यानी आपके पास जेन्युइन एक्सक्यूज है मुझे छोड़ने का। फिर आप फिर उसके बाद अब भले अपने साथ ना रखना। अब ये देखें कि उन्होंने माजरत कर ली, लेकिन साथ अपने लिए खुद, क्योंकि इतने ज्यादा शर्मिंदा थे ना, तो साथ अपने लिए खुद ही सजा भी तजवीज कर दी कि अब मैं अपना मुझे रखना, इसका मतलब है कि अब दिस इज द लास्ट टाइम, मुझे लास्ट चांस दे दें। तो आप सल्लम ने फरमाया ना कि मूसा अलैहि सलाम पर भी, मूसा अलैहि सलाम पर अल्लाह की रहमत हो, काश कि वो अपने साथी के साथ और सबर कर लेते और ठहर जाते तो हमें बहुत सारी तहज्जुब वाली बातें मालूम होती। तो उन्होंने खुद ही जब अपने लिए कह दिया ना कि अब अगर मैंने किया तो आप बेशक मुझे साथ ना रखना, तो फिर तो आप कुछ रह ही नहीं गया था। मीन्स कि अब बस लास्ट ही वार्निंग हो गई। फन तलाका, तो दोनों चले। हत्ता इदा अतैया अहला करियतिन इस्तत्अमा अहला, तो दोनों चले, तो जब हत्ता के वो पहुंचे एक बस्ती वालों के पास, तो दोनों ने खाना मांगा उनके रहने वालों से। अब खाना मांगा क्यों उनसे, बस्ती वालों से, इसलिए कि उस जमाने में भी ऐसा होता था, पहले जमानों से ऐसा चला आ रहा है कि जब भी कोई मुसाफिर किसी बस्ती से गुजरता करता था तो बस्ती वाले उसकी जियाफत करते थे, उसकी मेहमान नवाजी का, खाना पीना उसके ठहरने का इंतजाम करते थे, क्योंकि कोई होटल सराय वगैरह नहीं होते थे। तो इस तत्आमा, देखिए बाबे इस्तफाल से ना मांगने का माना, मैंने आपको बताया था सीनता शुरू में आते तो मांगने का माना होता है, तो उन्होंने मांग लिया खाना उनके रहने वालों से। तो अबू, तो उन्होंने तो साफ ही इनकार कर दिया, वो इतने ज्यादा बकील लोग थे कि उन्होंने ये भी नहीं किया कि एक मुसाफिर का ही लिहाज कर लेते, बल्कि उन्होंने ना सिर्फ खाना नहीं दिया बल्कि इनकार कर दिया, अयुदय्यिफूहुमा, कि वो मेहमान बनाए, यानी ये भी नहीं किया कि भाई उनको रहने का ही कुछ कर दें, उनका इंतजाम, या उनको यही कह दें कि ये फलानी जगह से खाना आपको मिल जाएगा, हम आपको रहनुमाई कर देते हैं, हमारे पास नहीं है, वहां से ले लें आप, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, साफ ही जवाब दे दिया, हम नहीं आपकी मेहमान नवाजी कर सकते। जबकि हमारी शरीयत में भी और पिछली शरीयतों में भी आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने मेहमान नवाज थे, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मेहमान नवाज, बल्कि ये फरमाया कि जो अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे, और 3 दिन तक तो जियाफत लाजमी है, यानी कोई भी आपके शहर में आए, आपको मुसाफिर है, तो उसकी मेहमान नवाजी करना जरूरी है। आज अगर होटल हैं भी, लेकिन आपकी कम्युनिटी में, मसलन आप ये देख लें, आपकी कम्युनिटी में कोई नया बंदा मूव हुआ, वो भी एक मुसाफिर ही है ना, अब जरूरी है कि हम उसको भी अपने अंदर, मतलब एंटर होने का मौका दें, अपने अपने पास बुलाएं, आप कोई दावत रख लें, उसको भी अपने साथ घुल मिलने मिलने का हम चांस दें। ऐसे नहीं है कि हम अपनी बस गैदरिंग्स रखें और किसी को ना इसके अंदर एंटर होने दें, कोई नया बंदा आता है तो वो बस वैसे ही रहे, वो बेचारा स्ट्रगल ही करता रहे, नहीं। अगर आप कहते हैं कि आज तो कोई किसी के घर जाके नहीं रहेगा, होटल वगैरह है, लेकिन इस तरह तो आप किसी की मेहमान नवाजी कर सकते हैं ना। तो फवाजा फी हाजिदारन, अब उन्होंने तो इस तरह से कह दिया, हमने नहीं आपको कुछ देना, हमने नहीं आपका कोई ख्याल करना, और यानी इनको बिल्कुल ही छोड़ दिया ऐसे कि ये ऑन देयर ओन है, अब कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे। इससे ये भी पता चलता है इनके पास कोई पैसे भी नहीं थे, और जब बस्ती से निकलने लगे तो फवाजा नफिया जिदारन, तो उन दोनों ने पाई इसमें एक दीवार, यूरीद अनकद्दा, वो ऐसी दीवार थी कि बस गिरने ही चाहती थी कि गिर ही जाए, यानी ऐसा था दीवार, बड़ी खूबसूरत एक इस तरह से बयान किया गया कि दीवार ऐसे चाह रही थी कि मैं गिर जाऊं, यानी वो बिल्कुल ऐसे थी कि बस, वो कहते ना एक गिरती भी दीवार को एक धक्का और दो, किस तरह, तो वो बस गिरने ही लगी थी। फाकामा, तो उन्होंने फौरन खदिर अलैहि सलाम ने क्या किया कि दीवार को सीधा खड़ा कर दिया, उसके बाद गारा वारा लगाया, उसकी एक एक ईंट सही करके और सीधा कर रहे हैं उसको। अब मूसा अलैहि सलाम थके हुए हैं, भूख भी लगी हुई है, ऊपर से इन लोगों पे भी गुस्सा है कि इन्होंने देखो हमारे खाने पीने से भी देने से भी इनकार करती है। इतने तो कम अज कम एटिकेट्स होते हैं। तो उन्होंने फरमाया लो शे तलतफ अजरा, अगर आप चाहते तो इसके ऊपर कम अज कम उनसे उजरत ही ले लेते। हम थके मांदे भूखे, आप उनको कह देते कि भाई मैं तुम्हारी दीवार ठीक करूंगा लेकिन इस शर्त के ऊपर कि तुम हमें खाना दोगे, तो हमें खाना ही मिल जाता। आप चल पड़े उनकी दीवार ठीक करने के लिए। अब ये भूल नहीं थी, ये बस उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कैसी बात आप कर रहे हैं। अब हालांकि इसके अंदर कोई सवाल नहीं है लेकिन एक शिकायत है ना, कि जैसे हम कह देते ना कि आप ये नहीं कर सकते थे, ये आपको करना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों किया। तो इसमें एक यानी ये तराज तो है कि आपने ये क्या काम किया। अल्लाह हू अकबर। तो जो आप सल्लम ने फरमाया ना कि पहली दफा मूसा अलैहि सलाम ने जो पूछा था वो भूल चूक थी, दूसरी दफा जो था वो शर्त थी, और तीसरी दफा तो उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ। कल हादा फिराकु बैनी व बैनिक, उन्होंने फरमाया बस अब हमारे जुदाई का वक्त आ गया, अब तो तुम अपना रास्ता लो, मैं अपना रास्ता। अब देखें सुभान अल्लाह, जिस वक्त मिले हैं तो मजमाल बहरीन था वो समुद्र का मिलना, और अब स्प्लिट की बात है, फिराक बहनी व बहने। खूबसूरती है जरा इसकी, वो आपको बता रही हूँ। अलैहि सबरा, मैं अनकरीब तुम्हें बताऊंगा हकीकत उसकी जिसकी तुम सबर करने का तुम इस्तात नहीं रख सके। एक इसके अंदर ये बात है कि देखें यहाँ पे भी उन्होंने ये यानी एहतमाम किया कि वो एक्सप्लेन करें इस चीज को कि क्या असल हकीकत है। चाहते तो वो कहते आई डोंट केयर, अब जाओ बस इतना ही, तुमसे सब्र नहीं हो सका, खत्म बात, तुम अपना रास्ता लो, मैं अपना रास्ता। लेकिन उन्होंने इस चीज को अहम समझा कि वो तावील इसकी हकीकत बताएं। क्यों? हमें इस चीज से सबक मिलता है कि जब कोई चीज ऐसी कोई देखे जिससे वो शकों को शुभात का शिकार हो सकता है, जिससे वो कुछ गलत फहमी का शिकार हो सकता है, तो जरूरी है कि इंसान उसको क्लियर कर दे। ये नहीं कहे मुझे क्या, जो मर्जी सोचते रहे, जो मर्जी समझते रहे, मेरी बला से। ऐसे नहीं करना चाहिए, आप उसको क्लियर कर दें। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतकाफ बैठे हुए थे, अपनी बीवी के साथ उनको घर छोड़ने जा रहे थे, सहाबा गुजरे, आपको मशहूर वाकया पता होगा, उन्होंने देखा तो तेज हो गए इधर। आसल ने फरमाया नहीं ठहरो, ये मेरी बीवी है, मेरे साथ जा रहे हैं। उन्होंने कहा यार रसूल, हम ऐसी कोई बात हम कहाँ सोच सकते थे, हमारा कभी दिमाग में भी नहीं ऐसी बात आती। आपने फरमाया नहीं, शैतान इंसान के अंदर ऐसे घूमता है खून की तरह। तो किसी के दिल के अंदर देखिए कोई बातें आ सकती हैं। कोई एक तो मौका ना दें किसी को कि कोई वो शक करे या गलत फहमी का शिकार हो। दूसरा, अगर कोई आपको ऐसी सिचुएशन में देख लेता है तो कोई हर्ज नहीं, आप क्लियर कर दें। ना कि आप ये सोचे कि ये मेरा काम नहीं है, इसको जो मर्जी सोचता रहे, आई डोंट केयर अबाउट इट, सोचे तो सोचते रहे, बातें बनाते हैं तो बनाते रहे। नहीं, आप क्लियर कर दें, जबकि आपको पता है कि आप इस तरह की किसी चीज में नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है कि आप उसमें अपनी बता दें कि ये है असल बात। तो यहां से मैं ये बहुत बड़ा सबक मिला। दूसरा, आप देखिए जब वो उनको भूख लगी थी ना वहां पे, जब वो फलम्मा जा वजा आया कि वो जो आगे चले गए तो उनको भूख लगी, तो फिर वापस पलटे। यहाँ पे भी भूख लगी और स्टोरी में वापस पलट के अब जाएंगे। सुभान अल्लाह, दिस इज जस्ट टेलिंग यू द ब्यूटी ऑफ इट, कि किस तरह यहाँ पे भी अभी भूख लगी, खाना मांग रहे थे, उनसे खाना नहीं मिला, भूखे हैं, तो अब स्टोरी में वापस जा रहे हैं कि शुरू से आप खिजर अलैहि सलाम बताएंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तुम बैठो कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या है। अब देखिए ना, यहीं तक हमें बस फिर पता चल सका क्योंकि यहीं पे इल्मी सफर उनका खत्म हो गया। अगर वो और सबर कर लेते तो फिर हमें और बहुत सारी बातें पता चल सकती थी। इससे पता चलता है कि बाज दफा हमारी जो बेसब्री होती है ना, वो हमें इल्म से महरूम कर देती है। इसी तरह बाज दफा आप जिस वक्त, क्योंकि हर उस्ताद का मिजाज डिफरेंट, उसकी शर्त डिफरेंट, उसके तो उसके लिए भी सबर चाहिए होता है। अगर आप उस्ताद के मिजाज के साथ सब्र नहीं करते, या जो उसने शर्त रखी हुई है या जो जिस कंडीशन पे वो आपको पढ़ा रहा है उसके ऊपर सब्र नहीं करते, तो फिर आप लूज कर देते हैं उस इल्म को। ठीक है, मसफीना तो वो बताते हैं कि वो जो कश्ती थी ना, फकानत ली मसाकीना, तो वो थी मिसकीनों की। अब यहां से हमें मिसकीन की डेफिनेशन पता चलती है, इसलिए कि हम सूरह तौबा में पढ़ चुके हैं कि जकात मिसकीनों को आप दे सकते हैं, और मिसकीन का जब हमें पता नहीं होता तो फिर हम कहते हैं लो जी उनके पास तो घर भी है, लो जी उस वो तो जॉब भी करता है, तो उसको दे सकते हैं जकात के नहीं। तो मिस्कीन यहां से पता चलता है कि मिस्कीन की डेफिनेशन क्या है, कि उसके पास जॉब हो सकती है और वो किसी चीज का मालिक भी हो सकता है। देखिए वो क्या थे, इसका मतलब वो जॉब करते थे, या अमलू ना फिल बाहर, उनका जो भी बिजनेस या जॉब क्या थी कि वो मछेरे थे, कश्ती में जो मल्लाह या लोगों को लेकर इधर उधर जाते होंगे या मछलियां पकड़ते होंगे, जो भी था उनका काम, लेकिन समुन्द्र में काम करते थे। और उनकी मिल्कियत थी ये कश्ती, इसका मतलब मिस्कीन मालिक भी हो सकता है किसी चीज का, मगर असल बात ये होती है कि उसके पास इतना ज्यादा कुछ नहीं होता। एक होता है फकीर, फकीर के पास तो कुछ भी नहीं होता ना, वो तो किसी चीज का भी नहीं मालिक होता। मिस्कीन जो होता है वो थोड़े बहुत का मालिक होता है, मगर हैंड टू माउथ होता है, मतलब डेली जरूरियात के लिए भी वो स्ट्रगल करता है। उसके पास ये कश्ती है या उसके पास घर है, तो खा तो नहीं ना देगा उसको, या उसे इलाज तो नहीं करा सकता, या उसे तालीम तो नहीं दे सकता, या अपने बच्चों की जरूरियात तो नहीं पूरी कर सकता ना, उसके ऊपर छत है बस। इसी तरह कश्ती को वो क्या करते, तो अब वो काम करते थे उसमें समंदर में। अच्छा, अब फअरदतु अन आइबहा, तो मैंने इरादा किया कि मैं उसको ऐबदार कर दूं, ऐब कर दूं उस कश्ती में। वकाना वराअहु मलिकुन, उनसे आगे, मैंने आपको बताया वरा का मतलब आगे भी होता है पीछे भी होता है, उनसे आगे एक बादशाह था। याखुज़ु कुल्ला सफीनतिन ग़स्बा, वो ले लेता था हर कश्ती को, जबरदस्ती छीन लेता था। अब देखें, कहने को ये बात के उनको बुरा लगा कि आपने ये क्या किया, एक उनकी कश्ती को डिफेक्टिव कर दिया, जिसको बजाहिर देखने में ये क्या थी सिचुएशन कि ये गलत काम है, ये बुरा हुआ, लेकिन असल में क्या था, इसमें खैर थी उनकी मिस्कीनों की। वो मिस्कीन थे, उनकी कश्ती में जब सुराख हो गया, तो बाज तफसीरों में ये आता है कि वो बादशाह जो था वो इतना जालिम था ना, उसने चाहा था कि मैं अपना बहरी बेड़ा बड़ा कर लूं, या वो वैसे ही जालिम था, वो गसब कर लेता था। तो वो जब इस कश्ती को देखेगा तो वो इस कश्ती को छोड़ देगा, इसलिए क्योंकि ये डिफेक्टिव है। ठीक है, इससे इनकी कश्ती बच जाएगी। तो सुराख तो ठीक हो सकता है, लेकिन जो कश्ती अगर वो ले गया तो वो तो वापस नहीं आ सकती। और दूसरा माना बाज मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि यहां पे यक्सु कुल्ला सफीनतिन, हर कश्ती को ले लेता था, हर एक को कॉन्फिस्केट कर लेता था, कब्जे में ले लेता था। तो अब जब इसमें सुराख देखेंगे वो लड़के जो मिस्कीन थे, तो वो जब इसमें सुराख देखेंगे तो वो इसको फिक्स करने के लिए साहिल पे जाएंगे। जब वो साहिल पे जाएंगे तो वो जालिम बादशाह वहां से गुजर के निकल चुका होगा, और जब ये वापस आएंगे तो वो जा चुका होगा, तो इनकी कश्ती बच जाएगी। इसको फिक्स करने के लिए लेकर जाएंगे, जाहिर है वो उसमें टाइम लगेगा, तो वापस आने तक वो चला जाएगा। तो दोनों चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा सबक मिलता है ना कि जो चीजें भी हमें बजाहिर बुरी लगती हैं, उनके अंदर हमारे लिए कितनी बड़ी खैर हो सकती है। सारे ही जो सबक है उनमें आपको यही बात भी मिलेगी कि जिंदगी में उतार चढ़ाव, कई चीजें इतनी बजाहिर ऐसे देखने में ऐसे के नुकसान देने वाली, और ये क्या हो गया हमारे साथ, और इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके अंदर हमारे लिए कितनी बड़ी खैर है। देखें, मूसा अलैहि सलाम के पास इतना ज्यादा इल्म था, फिर भी उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हिकमत है इसके पीछे। तो खुद बताइए मुझे और आपको कैसे समझ आ सकता है, क्योंकि मैं और आप लार्जर पिक्चर नहीं देख सकते, फ्यूचर को नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना, ये गैब की बातें हैं। लेकिन हम कम से कम ये तो हमारा बिलीफ है ना कि जो अल्लाह ताला करता है उसके अंदर बेहतरी है, ये तो बिलीफ है ना, हमारा गैब पे ईमान है ना। और गैब में ईमान ये भी है, गैब में ये भी चीज है कि हर चीज के पीछे कोई हिकमत है। लेकिन क्या बात होती है कि हम उस वक्त भूल जाते हैं बिल्कुल। अगर मेरे घर में चाबी गुम हो गई, अब मैं उसको तलाश कर रही हूं और गुस्से में आ रही हूं और बच्चों को डांट रही हूं और ऐसे कर, क्या पता अगर मैं इस वक्त निकलूं तो आगे कोई एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ताला ने उसे बचाना हो। आपने खाना बनाया वो सारा जल गया, आप रोने लगे कि भाई हाय खाना जल गया, मेरे ये हो गया, लेकिन क्या पता इसी खाने में कोई बैक्टीरिया था जो सबको अगर खा लेते तो बीमार पड़ जाते। तो अंधा यकीन होना चाहिए कि ये जो सब है इसमें अल्लाह ताला की बेहतरी है। बाज चीजों के बारे में तो जिंदगी के किसी टाइम पे हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या बेहतरी है, बाज चीजों तो सारी जिंदगी नहीं पता चलता और सारी जिंदगी हम रोते रहते हैं, आए काश ये हो जाता, आए काश वो हो जाता, क्योंकि हमारा बिलीफ, हमारा यकीन स्ट्रोंग नहीं है कि अल्लाह की तरफ से जो होता है उसमें बेहतरी है। अगर हमें वो बेहतरी नजर आ जाए तो हम रोने की बजाय शुक्र करने लगे। देखिए ना, बाज लोग कहते हैं हाय मेरी फलां जगह शादी हो जाए, वहां पे नहीं हुई, बड़ा जोर लगाया नहीं हुई, उसके बाद सारी जिंदगी रोते रहेंगे, हाय वही होती तो अच्छा था, वो उसी को याद कर करके उसने नहीं होने दी। तो वहां होती तो आपको क्या पता क्या होता, हो सकता है जिसके साथ होती वो आपके साथ बुरा सलूक करता, हो सकता है जिसके साथ होती वो बदल जाता बाद में, आज प्यार मोहब्बत की बातें करता है कल कुछ और करता, हो सकता है वो किसी हादसे में अल्लाह वो प्यारा हो जाता, हो सकता है उससे होने वाली औलाद सही ना होती। तो ये तो अल्लाह ताला को पता नहीं क्या डैमेज होना था, मगर अक्सर जिंदगी हम इन्हीं बातों पे गुजार देते हैं, हाय काश ये हो जाता, हाय वो हो जाता, वो बड़ा अच्छा था, वो चीज ऐसे नहीं हुई, मेरे साथ ये बुरा क्यों हो गया, मेरे घर में फलाना होती तो कितना अच्छा होता, इनके बगैर जिंदगी होती तो कितना अच्छा लगा, आपको क्या पता इसकी कितनी बरकतें हो सकता है, इसकी वजह से ही आपको कोई रिस्क मिल रहा। तो जो चीज शुरू में कोई बुरी नजर आ रही हो, आसान तकराउ शेई अम वो खैरुल लकुम, हाँ हो सकता है तुम्हें कोई चीज बुरी नजर आ रही लेकिन उसमें ही तुम्हारे लिए खैर है, और ये अल्लाह ताला की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें बता बता के चीजें करे कि ये देखो इसमें तुम्हारी ये खैर है, नहीं, हमें इस चीज को अगर पता चल जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता चलता तो तब भी हमारा यकीन इतना पक्का होना चाहिए कि हमें कोई परेशानी ना हो। फिर दूसरी बात देखें, ये मसाकीन जो थे ना, वो हालांकि मसाकीन थे, गरीब लोग थे बेचारे, उनकी रोजगार क्या थी, ये काम करते थे, इसके अंदर एक कश्ती थी उनके पास, तो मिस्किन से आपको पता चल गया ना कि वो हार्ड टाइम उनके लिए था, मतलब है कि अपनी जरूरियात पूरा करना भी मुश्किल होता है ऐसे गरीब लोगों में से आते हैं, लेकिन वो इतने सखी थे कि उन्होंने बगैर कराए कि इनको बिठा लिया, वो कहते तो हम तो खुद इतने गरीब हैं, आप पे करेंगे तो बैठेंगे। तो इससे पता चलता है कि वो सखी थे, उनके दिल बड़े थे, तो जब उन्होंने कश्ती के मामले में सखावत की, अल्लाह ताला ने उनकी कश्ती को सेव करा, उनकी कश्ती की हिफाजत की। तो जो चीज भी आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में, चाहे वो आपका माल है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो इल्म है, चाहे वो औलाद है, जिस चीज की भी आप चाहते हैं ना कि इसकी हिफाजत हो और इसमें बरकतें मुझे मिलें, तो आप उसको अल्लाह के रास्ते में लगाना शुरू कर दें, ये मेन मैसेज है इसमें। आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चों की हिफाजत हो, बच्चों को दीन में लगाएं, नमाज रोजा कुरान इस तरफ लगाएं, आप चाहते हैं कि आपके माल में बरकत हो, माल को अल्लाह के रास्ते में दें, आप चाहते हैं कि आपका इल्म बाकी रहे और इसकी बरकतें आपको मिले, अपने इल्म के जरिए अल्लाह के दीन की खिदमत करें, जिस चीज को भी आप चाहते हैं महफूज रहे उसको लगाएं, आप देखेंगे अल्लाह ताला खुद उस चीज की हिफाजत करेगा।
आप देखिए ना, वो ना अगर इनको बिठाते कि जरा मूसा अलैहि सलाम को, तो उनकी कश्ती को बचती नहीं, बचती जाते, बाकी कश्तियां चली गई, उसने पकड़ ली, इनकी भी हो जाती। तो इन इससे पता चलता है, जब इंसान अपना दिल बड़ा करता है, अल्लाह ताला को सही इंसान पसंद है, जब वो अल्लाह की खातिर, अल्लाह के रास्ते में देने में अपना दिल बड़ा करता है, तो अल्लाह ताला कैसे हिफाजत करता है। अब देखो हदीस जो खेत वालों की है मिसाल, कि वो कैसे हदीस में आता है ना, वो बादल से आवाज आ रही थी कि फलां के खेत को जाके पानी दो, तो उस बंदे से जब जाके पूछा गया, उसने कहा मैं एक 1/3 अपना माल अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। 1/3 कौन अपनी पे में से 1/3 देता है अल्लाह के रास्ते में। इस तरह वो हदीस में आता है कि आपसे सरम के दौर में दो भाई थे, एक दीन का तालिबे इल्म था और दूसरा जाके मजदूरी, मेहनत मजदूरी करता था, रोजी कमाता था, और एक सुफा वालों के साथ बैठ के आपसे सलम से दीन सीखता था। तो एक दिन वो भाई जो मजदूरी करता था, वो आके कहने लगा कि ये मेरा भाई देखे जरा, मेरी कोई हेल्प नहीं करता, और बस पढ़ने में, यहाँ पे पढ़ने पढ़ाने में लगा हुआ, बस इन्हें यही बस शुरू किया हुआ काम। तो आपसे सलम ने फरमाया कि शायद के तुझे रोजी इसी की वजह से मिलती है। तो आपको क्या पता रोजी उस वजह से मिल रही है। देखिए आप, उसने अपना वक्त अल्लाह के रास्ते में दिया ना, अल्लाह उस वजह से उनको रोजी दे रहा। तो हमें नहीं पता होता। और ये बात खास तौर पे वो लोग जिनके हस्बैंड्स बहुत कहते हैं ना कि तुम लोग ये क्यों दीन पढ़ने बैठ गए हो, कोई जॉब करो, कोई पैसे आए, कोई फायदा हो, तो उनको ये हदीस जरूर सुनाए। क्या पता कि अल्लाह ताला ऐसे आदमियों को इन औरतों की वजह से ही दे रहा हो जो अल्लाह के दीन का इल्म सीख रही। इस हदीस से साफ वाजे है। तो कुछ भी है, चाहे आपका वक्त है, पैसा है, घर है, आपकी कोई जगह है, आपकी गाड़ी है, आप उनकी कश्ती थी ना, आपकी गाड़ी हो सकती है, तो कुछ को राइट दे दे, कहीं जाने के लिए, किसी मस्जिद के लिए, या वैसे ही किसी के काम के लिए जाने के लिए आप जा रहे हैं, उसको भी आपने साथ बिठा लिया, इससे उस चीज की हिफाजत होगी, क्योंकि आप अल्लाह की खातिर ये नेकी कर रहे हैं। उनको मस्जिद तो नहीं लेके जा रहे थे, लेकिन उनको बस राइट दे रहे थे ना, लेकिन अल्लाह की खातिर एक नेकी की थी उन्होंने। तो इसलिए इस चीज में कभी बुखल नहीं करना चाहिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में, क्योंकि हमेशा ये सोच के खर्च करें कि मेरी चीज की हिफाजत इसी में है। ठीक है। वह अमल गुलाम उफकाना अबावाहु मुमिनीन, तो वो जो लड़का था, तो उसके माँ बाप जो थे वो मोमिन थे। एक बात यहाँ पे ये कि इब्ने अब्बास इसको इस तरह पढ़ते थे, अमल गुलाम फकाना काफिरा अबावाहु मुमिनीन, तो वो काफिर था। हदीस में आता है कि वो लड़का पहले दिन से काफिर था, और वो अगर जिंदा रहता तो वालदैन के लिए भी कुफर का जरिया बनता। तो इसीलिए आ गया ना, फखशीना अन युरहिकहुमा तुगयान व कुफरा, तो डर हुआ हमें कि वो गालिब आ जाएगा उन पर सरकशी के साथ और कुफर के साथ। और अल्लाह ताला की तरफ अगर ये खशीना का लफ्ज करें, तो अल्लाह ताला तो डरता नहीं है किसी चीज से, मतलब है कि जरूर ऐसा हो जाना था। और अगर खादिर अलैहि सलाम की तरफ करें, तो फिर हाँ डर था, कि मतलब ये हमें डर था कि यानी ये डेफिनेटली ये चीज हो जानी थी, 100% ये होना चाहना था। ऐसा नहीं था कि हो सकता था कि वो खराब निकल आता, हो सकता था कि वो सही भी निकल आता, ऐसा नहीं था। हमें डर है, हम अपने लिए तो ऐसा ही बोलते हैं ना कि मुझे डर है कि कल को मेरी जॉब ना चली जाए, तो मुझे डर है कि मतलब जॉब जा भी सकती, नहीं भी जा सकती, ऐसी वाली बात नहीं, यहाँ पे डेफिनेट वाली बात है। तो हसीना मतलब है कि अब हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। कतादा लिखते हैं कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था ना, तो ये वालदेन बहुत खुश थे, लेकिन जब वो फौत हुआ तो वो बहुत गमगीन हुआ, मगर वो नहीं जानते थे कि इसके लेने से अल्लाह ताला ने उनको कितनी बड़ी मुश्किल से बचा लिया, क्योंकि ये बच्चा उनके लिए, उनके ईमान के लिए खतरा बन सकता था, उनको कुफर तक पहुंचा सकता था। अब बजाहिर देखने में ये फैसला कितना इंसान के लिए नापसंदीदा हो सकता है, क्योंकि औलाद की जो गम है वो बहुत बड़ा होता है, और इंसान कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी औलाद दुनिया से चली जाए उसकी जिंदगी में। वो कहता है मेरी जिंदगी में मेरी औलाद को लग जाए, लेकिन अल्लाह ताला को पता था कि ये उनके लिए कितना ज्यादा एक मसला पैदा कर सकता। योर हिकमा मतलब है कि ओवर बर्डन कर देता हूँ सरकशी से और कुफर से, यानी इनके ऊपर गालिब आ जाता। मतलब क्या, यानी वो बड़ा होता तो इसकी मोहब्बत जो थी ना वो वालदैन के दिल के अंदर इतनी होनी थी कि वो जब गलत कामों की तरफ जाता, कुफर में जाता, तो ये भी उसके पीछे चल पड़ते या उसको सपोर्ट करते और उसकी हाँ में हाँ मिलाते या उसके कुफर पे राजी हो जाते। उसकी मोहब्बत, जो औलाद की इतनी मोहब्बत होती है ना, बाज जब आप देखें वालदैन अच्छे भले खुद होते हैं लेकिन उनका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो बस उसकी जस्टिफिकेशन देते जाएंगे, नहीं वो ऐसे नहीं वो तो ऐसे, बच्चे को सपोर्ट ही करते रहेंगे। एक माँ देखें, एक माँ ने मुझे खुद कहा कहने लगी मेरी बेटी ने किसी हिंदू से शायद कोई मुशरिक से इस तरह शादी कर ली है, तो कहने लगी क्या हुआ उसने अगर शादी कर ली, वो तो मुसलमानों से भी ज्यादा अच्छा है। आप देख लेना औलाद की मोहब्बत इंसान को कहां तक पहुंचा देती। तो ये बात सबक हमें पता इससे ये चलता है कि जहां वालदैन का असर औलाद के ऊपर होता है, औलाद का भी असर वालदैन के दीन पे होता है। वालदैन का तो होता ही है ना, लेकिन औलाद का भी असर वालदैन के दीन ईमान पे हो जाता है। तो जब वालदैन कोई वो उल्टे सीधे रास्ते पर ले जाते तो उसको इसलिए कत्ल किया गया कि इसके वालदैन का दीन ईमान बच जाए। आप इन द लॉन्ग रन देखे ना, कोई कितना भी जी ले, कितनी भी लंबी औलाद की उम्र हो जाती, लेकिन अगर उसकी वजह से आखिरत खराब हो जाती औलाद की भी और इन वालदैन की भी, तो लूजर थे। और अगर आखिरत अच्छी हो गई तो आज नहीं तो कल तो चले ही जाना था उस बच्चे ने, बच्चा नहीं होता तो बूढ़ा होके चला जाता, मगर अगर आखिरत अच्छी हो गई तो दुनिया का बड़ा से बड़ा नुकसान भी कुछ नहीं। वो बच्चा बच गया और वालदैन भी बच गए। कैसे बच गए? वो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली दफा बात बताई थी ना हदीस के, वो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था ये सिर्फ बच गया, ये दस्ती बच गई है, तो आपने फरमाया यही तो नहीं बची, वो बच गया। तो वो बच्चा तो बच गया और वालदैन भी बच गए, मगर देखने में ये बात लगती है कि बच्चा तो खत्म हो गया, कितनी दुख वाली बात लगती है। लार्जर पिक्चर में देखें तो अल्लाह ताला को इल्म है ना कि इसने क्या बनना है, इसने क्या आफत लानी है, और अगर हम इस बातों को ईमान ना रखें कि अल्लाह ताला ने जो फैसला किया है और तकदीर में जो फैसला लिखा है मेरे लिए वो अल्लाह ताला की हिकमत से है, उसमें खैर है, और अगर हम इस पे ईमान नहीं लाते तो फिर कुरान तो शुरू ही किस बात से हुआ, युमिनूना बिलगैब। तो तकदीर भी गैब है, तकदीर के फैसले भी गैब है, और हमारा ईमान है तकदीर के फैसले अल्लाह ताला की हिकमत पे मबनी है, तो हमें नहीं यकीन अल्लाह की हिकमत पे, फिर हमें नहीं यकीन कि ये अल्लाह ताला का इल्म सही है, अस्तग़फिरुल्लाह। और हम क्या समझते हैं बस सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हैफेजर्ड हो रहा है, खुद ही होता जा रहा है? नहीं, तो कुफर का मतलब ये भी है कि वो ईमान से चला जाता है, या नाशुक्री भी कुफर होती है। और बच्चे के फौत होने से फायदा क्या हुआ कि उनका ईमान बच गया, बल्कि उनके दर्जे बुलंद हो गए। आप सोचेंगे तो फिर अल्लाह ताला उनको बच्चा देता ही ना, हालांकि अल्लाह ताला हदीस में आता किसी से प्यारी चीज उसे ले ले और वो उस पर सबर करता तो उसके लिए जन्नत के सिवा कोई बदला नहीं। अल्लाह ताला ने उनको जन्नत देनी थी, अल्लाह ताला ने तो उनके साथ और भलाई कर दी, उनका बच्चा देख के उनसे लिया, उस पर उन्होंने सबर किया, उनके लिए जन्नत हो। दूसरी हदीस में एक और में आता है कि एक औरत आके कहती है या रसूल मेरे 3 बच्चे फौत हो गए, आपने फरमाया 3? बोली हाँ। आपने फरमाया फिर वो तुम्हारे लिए जन्म के आगे आड़ बन जाएगा, 3 आड़ बन जाएंगे, 3 रुकावटें हो जाएंगी, 3 बच्चे थे ना। सुभान अल्लाह। एक और हदीस में आता है कि जब किसी की औलाद वफात पा जाती है और वो उसके ऊपर सबर करता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्ते से कहते थे मेरे बंदे ने क्या कहा जब तुमने उसकी प्यारी चीज उसे छीन ली, उसके दिल का टुकड़ा उसे ले लिया, तो वो कहते हैं अल्लाह ताला उससे तेरी हमद बयान की, अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके लिए जन्नत में बैतुल हमद बना दो। ये सबर का नतीजा है। देखिए वक्त के साथ साथ तो सबको ही सबर आ जाता है, उसमें क्या कहना, भाई सबर आ गया अब तो सबर ही करना है, वो तो फिर सबर आ ही जाना। लेकिन असल बात ये उस वक्त जिस वक्त ये मामला हुआ उस वक्त जो सबर करता है उसके लिए इतना बड़ा रिवॉर्ड है कि जन्नत की बशारत। उस टाइम पे अल्लाह ताला देखता है कि इसका रिएक्शन क्या हुआ, क्या ये मेरी हम्द बयान करता है, क्या ये सबर करता है। और रिश्ते कहते हैं उसने इन्ना लिल्लाह कहा, अल्लाह ताला उसने तेरी हम्द बयान की, तेरी तारीफ बयान की, उसने सबर किया, उसने शुक्र किया, तो इसलिए तो अजर बहुत बड़ा है। अब वक्त के साथ साथ सबर तो काफिर को भी आ जाता है, तो ईमान वाले का फिर क्या सबर हुआ। इसी तरह तिर्मिजी के हदीस में आता है, आप सल्लम ने फरमाया कि जन्नत से कम कोई जजा नहीं है उसके लिए जो किसी प्यारे की वफात के सदमे पर सबर से सबर करता है। जन्नत से कम कोई चीज नहीं उसके लिए, यानी कोई और बदला नहीं है, बस उसको जन्नत ही मिलेगी। और छोटे बच्चे जो फौत हो जाते हैं उनकी तो फरमाया, जैसे यहां पे आया तो उनके बारे में हदीस है कि वो शिफात की इजाजत उनको मिलेगी क्यामत के दिन। वो अल्लाह ताला से फरियादे करेंगे कि या अल्लाह हमारे वालदैन को बख्श दे, इसलिए कि उन्होंने सबर किया था हमारी वफात। और फिर एक में आता है कि एक हदीस में आता है कि वो जन्नत के दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे होंगे और अपने वालदैन का हाथ पकड़ के उनको जिस दरवाजे से वो चाहेंगे उससे दाखिल कराएंगे वो बच्चे। यही तो फर्क होता है ना, जब हम कुरान पढ़ने लगते हैं ना तो कुरान हमारी आंखें ऐसे खोल देता है कि आखिरत में खोल देता है, कि पहले हम सिर्फ दुनिया को देखते थे और यहीं के प्लस माइनस करते हैं, ओहो किसी का नुकसान हो गया, ओहो किसी का फायदा हो गया, ये बड़ा अच्छा रह गया जिसका पैसा मिल गया, ये बड़ा नाकाम हो गया, ये बड़ा बेचारा बेमुराद हो गया, हाय हाय इसके साथ तो ये तकलीफ हो गई, इसको तो ये बीमारी हो गई, इसको तो बच्चा फौत हो गया इसका, और यहीं पे हम उसको बेचारा और अफसोस और ये तो बस लूजर और फलाना तो ऐसे, ये हम जब हम दुनिया को सिर्फ देखते हैं इसकी नजर से। लेकिन अगर आप आखरत कुरान पढ़ के अगर आखरत की आंख ना खुली, आखरत में आंख अगर आप नहीं खोल रहे अभी तक, तो फिर कुरान पढ़ने से आपने क्या हासिल किया। अगर आखरत में आपको नहीं ये समझ आ रही कि इसका क्या वहां पे मिलना है, देखो इसका कितना फायदा, आप सिर्फ सतही चीज देख रहे हैं, जो एक काफिर भी यही देख रहा है कि ये बेचारे का हाय कितना दुखी बात है, इसका तो नुकसान हो गया, इसका तो बच्चा फौत हो गया, ये तो उसके लिए कितनी बड़ी बड़ी बशारतें। तो एक और बात इसमें कि तकदीर के फैसले को एक्सेप्ट करना, अल्लाह ताला ने जो कदर लिख दी है, जो काम हम नहीं भी समझ सकते, कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई आफत आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जॉब चली जाती है, किसी का वीजा नहीं लग रहा है, तो ये किस्सा ना भूलें कि अल्लाह को पता है क्यों ये काम नहीं हो रहा। हम ये करते रहते हैं, हाय ये ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, वो अल्लाह को पता है। बहुत से हादसा, बहुत से प्रॉब्लम जिंदगी में आते हैं जिनसे इंसान बड़ा कुछ लर्न करके बड़ा आगे चला जाता है, अल्लाह के यहाँ इतने दर्जात पा लेता है, इवन इस दुनिया की जिंदगी में भी वो उन मकामात पे पहुंच जाता है, शायद आज भी हम भी जहां खड़े हैं वहां पे ना होते अगर वो हमारी जिंदगी में वो रुकावटें ना आती जो कभी आई थी, जो कभी हमारे साथ मसले हुए थे जिनको हमने बुरा जाना था। छोटी सी एक मिसाल आपको देती हूँ, बिल्कुल छोटी सी, आप बहुत सारी मिसालें हैं लेकिन एक मिसाल से सिर्फ आपको कहती हूँ, कहते हैं जब हम छोटे होते हैं, टीनेजर होते हैं लड़कियां खासतौर पर, हमारे वालदैन कितनी रोक टोक करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस इतनी हमारे ऊपर लगाते हैं, इसके नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इस सहेली के पास नहीं जाना, उसके किसी के घर पे नहीं रहना, रात को नहीं रहना फलाने, और इतना उस वक्त गुस्सा आता है कि हाय हमारे ऊपर ही सारी रिस्ट्रिक्शन, हमारे साथ ही सारे मसले, हमारे भाई तो हर तरफ घूमते फिरते हैं, उन पे तो कोई पाबंदी नहीं है, हाय हमारे लिए मुसीबत, और ऐसे लगता है जैसे बस पता नहीं किस मुसीबत में हम फंस गए, हालांकि पता नहीं वो पाबंदियां ना लगाते तो हम किसी गलत लोगों के हाथ में ना लग जाते, किसी ट्रैप में ना फंस जाते। तो देखा जाए तो इंसान की जिंदगी में ये पाबंदियां, रुकावटें, मसाइल उस वक्त बड़ी मुसीबत लगते हैं, उस वक्त के वो दुख ऐसे लगते हैं कि जैसे इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं, मगर उसके बाद भी अगर देखा जाए तो उसके अंदर कितनी खैर है वो इंसान समझ ही नहीं सकता। बस बच्चे रो रो के डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हाय मेरे नंबर नहीं आए इतने, क्या पता आपके नंबर आ जाते हैं, आपको उस कॉलेज में जहां पे आप मेडिकल स्कूल में जाना है वहां पे चले जाते तो क्या हो जाता आगे। मुझे किसी ने बताया कि एक रेजिडेंसी करने में किसी ने खुदकुशी कर ली, इतना उसको प्रेशर था। आप कोविड में देख लें कई डॉक्टर्स ने खुदकुशियां कर ली, वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके। तो यही सोच रही थी देखो जिस वक्त डॉक्टर बने होंगे या जिस वक्त इनको दाखले मिले होंगे कितने खुश होंगे, लेकिन यही प्रोफेशन उनके लिए जानलेवा हो गया ना। उनको इंसान को उस वक्त नहीं पता होता, वो सोच रहा था अब किसी को ना मिले तो वो रो रहा होगा, उसको नहीं पता कि कल को उसको मिल जाए तो उसका ये हाल हो। इसी तरह कई लड़कियां वो हर वक्त इसी के ऊपर रोती रहती हैं कि हम इतनी खूबसूरत नहीं है। खूबसूरती फिर देख लें यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती ने कितना फितने में डाल दी, क्या पता है कौन लोग पीछे लग जाएं, क्या पता है किसी की नजर लग जाए, क्या पता है क्या हो जाए इस खूबसूरती की वजह से। तो हम नहीं जानते, कोई जॉब नहीं मिली तो उसके ऊपर लोग रोते रहते हाय क्यों नहीं मुझे जॉब मिली, उसके ऊपर स्ट्रेस में आ जाते हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा, डिप्रेशन हो गया है, पता नहीं क्या क्या। इसलिए कि हमारा ये तकदीर पर ईमान नहीं, और इसलिए कि हम इन चीजों को जो ये कुरान हमें सिखा रहा है इनके ऊपर हमारा यकीन नहीं है। कहीं लेट हो जाते हैं तो कितना तूफान खड़ा कर देते हैं। एक मुझे बात हादसा नहीं भूलता किसी के साथ हुआ था, दो लोग थे एक फैमिली के, बहनोई साला बहनोई थे शायद इस तरह। तो वो दोनों अगले दिन ईद थी रात को अपनी फैमिली को अपने घर पे उतारा उन्होंने, और उन्होंने कहा हम करीबी शॉप से जाके कॉफी लेकर आ रहे हैं, करीबी शॉप से बाहर निकले, सामने से एक लड़का जो अपने घर से डिप्रेशन में निकला था उसने लाके गाड़ी इनके सामने मारी और दोनों सारे ही खत्म हो गए। अब बड़ी पिक्चर में देखें तो ये हादसा होना था, इन्होंने ऐसे निकलना था और इस टाइम पे यहाँ पहुंचना था। और कई दफा मैं जब भी इस हादसे का सोचती हूँ सोचती हूँ अल्लाह, एक सेकंड की भी अगर ताखीर हो जाती तो वो लड़का निकल जाता। जैसे मैंने अभी आपको ये कश्ती वालों की बात बताई कि वो बादशाह निकल जाता और ये जब कश्ती लेकर आते तो वो जा चुका होता, तो वो 2 मिनट कोई बच्चा रोने लग जाता है, टायर पंक्चर हो जाता, चाबी गुम हो जाती, किसी का कुछ हो जाता, कोई और फोन आ जाता, कोई बुला लेता, तो ये उससे बच सकते थे। कई दफा हमारे साथ ऐसे होता है ना, लेकिन हम उसके ऊपर बहुत तड़पते हैं, लेकिन वो अल्लाह ने किसी हादसे से हमें रोकना होता है, इनकी तकदीर में लिखा होता है ये वहां पहुंच गए। तो इसलिए चीजों को हम नहीं लार्जर पिक्चर में देख सकते, ये मान जाए, और हमारी इतनी इस्तेआत ही नहीं है। इसलिए जो चीज आपके साथ हो रही होती है उसके ऊपर ये समझ लिया करें कि ये अल्लाह ताला ने मेरे साथ कोई भलाई की है, इसके अंदर इस शर में भी कोई खैर है मेरी। और देखें आगे क्या हुआ, क्योंकि वो नेक थे इसलिए फअरदना अन युगदिल्लाहुमा, अब ये इसको भी नोट करें अदना को, कि हमने इरादा किया कि अयुबदिलाहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रबा, कि बदल कर दे उनको उनका रब बेहतर इससे पाकीज़गी में और ज्यादा करीब शफ़क़त में। इसकी दो किरात हैं, युबदिलाहुमा और जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं युबदिलाहुमा, युबदिलाहुमा और इसमें थोड़ा सा फर्क है। युबदिलाहुमा जो पढ़ते हैं वो किरात भी है, उसमें यह है कि असल चीज बाकी रहती है उसकी सिफत बदल जाती है। मसलन है कि आपकी आपका घर है, आपने उसको सारा रिमॉडल कर दिया, घर तो वही है लेकिन आपने अंदर रिमॉडल कर दिया, उसको बिल्कुल ही अंदर से नया बना लिया। और युबदिला हुमा का मतलब क्या है, बिल्कुल ही रिप्लेस कर देना, यानी आपने ये घर छोड़ के नया घर ले लिया, ठीक है। तो जो युबदिला हुमा तर्जुमा सॉरी किरात करते वो इसका तर्जुमा ये लेते हैं कि अल्लाह ताला ने एक और लड़का दे दिया मगर उसकी सिफात अच्छी थी, वो ऐसा नहीं था। दूसरा युबदिला हुमा कह दिया कि बिल्कुल ही बदल दिया, तो यानी उन्होंने उनको अल्लाह ताला ने लड़का नहीं दिया फिर लड़की दे दी। तो उलमा कहते हैं कि बाहर क्या लड़का दिया या लड़की दी, रिप्लेस कर दिया आपने, बदल दिया उससे, बेहतर चीज दे दी उससे, उनको अजर भी मिल गया, उनको उससे बेहतर चीज भी मिल गई। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे देखें ये नहीं फरमाया उनको हमने लड़का ही दिया कि एक गुलाम और दे दिया या लड़की दे दी, क्यों नहीं ये फरमाया, ये फरमा दिया कि खैरम मिनहु ज़क़ातन व अक़रबर हूँ। देखें इसलिए कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह के नजदीक इस चीज की कोई अहमियत नहीं कि वो लड़का है या लड़की है, इस चीज की अहमियत है कि वो किस किस्म का इंसान है। कि यानी यहाँ पे देखिए ज़कातन का मतलब क्या, पाक पाकीज़ा, ईमान पाकीज़ा, इखलास वाला, ठीक है, पाकीज़गी वाला, प्योर, दीन में प्योर, और अकरब रहमा, शफकत वाला, कहा जाता है अपने वालदेन के साथ बहुत शफकीक मेहरबान बेटी या बेटा, और बाज़ तफ़सीरों में आता है कि सब लोगों के साथ शफीक और मेहरबान, यानी अखलाक वाला। तो ईमान में भी अच्छा और अखलाक में भी अच्छा, क्योंकि जब रहम होता है शफकत होती है तो वो अखलाक की बात है, तो बेस्ट कैरेक्टर वाला बच्चा दिया। तो अल्लाह ताला को तो इस चीज से यानी अल्लाह के नजदीक ये चीज अहमियत रखती है। अगर लड़का हो जाए और वो उसका ईमान ही सही नहीं है और वो अखलाक में भी अच्छा नहीं, तो उसके उसका क्या फायदा। और लड़की हो, चाहे वो लड़की है, लेकिन अगर उसके अखलाक अच्छे हैं, किरदार अच्छा है, ईमान अच्छा है, नेक है, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको बेहतरीन चीज अता फरमाई। इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला जब किसी से कुछ लेता है और इंसान उसके ऊपर सब्र कर देता है ना, तो अल्लाह ताला जरूर उसको उससे बेहतर नेमत बदल देता है। हदीस में भी आता है कि अल्लाह ताला जब किसी से कुछ लेता है तो उसको उससे बेहतर अता करता। कभी ऐसा नहीं होता कि इंसान कुछ छोड़े अल्लाह के लिए और अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर ना दे। मसलन आप कोई अपनी बुरी कंपनी छोड़ते हैं, ऐसे दोस्तों को छोड़ देते हैं, जैसे आपने आप पीछे पढ़ा कि अपने आप के इन दोस्तों के साथ लगाओ जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, जो ऐसे हैं, ऐसे दोस्तों को छोड़ दो जो दुनिया की जीनत के पीछे। तो अब आपने सोचा, लेकिन आप एकदम दिल में आता है हाय मैं अपने दोस्तों को छोड़ दूं, वो तो मेरे इतने पुराने दोस्त हैं, वो तो मुझे समझते हैं, कितना मुश्किल है न्यू फ्रेंड्स बनाना। लेकिन अल्लाह की खातिर जब आप करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर नेमुल बदल जरूर देता है, अल्लाह ताला आपको कॉम्पेंसेट जरूर करता है। कभी हम देखे तो देखे, हम डरते हैं। आप देखिए, मैं एक दफा जुनेद जमशेद, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उसने कहा था कि मैंने गाना बजाना, शोहरत, पैसा छोड़ा अल्लाह की खातिर, तो अल्लाह ताला ने मुझे इससे भी बेहतर दे दिया। कहता अभी भी मेरी शोहरत है, और देख लें उसकी शोहरत, उससे बेहतर शोहरत उसको मिल गई। पहले क्या था, गाने बजाने की शोहरत, अब दीन की शोहरत मिल गई। फिर क्या, पैसा छोड़ा कि जो गाने से मिलता था, अल्लाह ने उससे उसका ब्रांड नेम ऐसा चलाया कि उसके जाने के बाद भी वो चल रहा है। सुभान अल्लाह, तो कहीं अल्लाह कमी नहीं आने देता। तो जब आप किसी चीज को भी छोड़ते हैं या कोई चीज अल्लाह ताला आपसे ले लेता और उसके ऊपर आप सबर करते हैं ना, अल्लाह की खातिर सबर करते हैं, तो अल्लाह ताला बेहतर अता फरमाता है। हराम को छोड़ा अल्लाह की खातिर कि ये हराम है, अल्लाह ताला हलाल अता फरमा देगा, वो हलाल रिस्क की फरमानी कर देगा। बस यकीन होना चाहिए ना, सिर्फ यकीन नहीं होता। और आगे जो तीसरा किस्सा था वो अम्मल जिदार, और जहां तक दीवार का ताल्लुक है, फकान अली गुलामैन यतीमैन फिल मदीना, तो वो थी दो लड़कों की, यतीम लड़कों की, जो शहर में थे। अब पहले क्या कहा गया नोट करें आप, पहले क्या कहा गया था, कहाँ पे वो गए थे खिजर और मूसा अलैहिस्सलाम, मदीना का तो लफ्ज ही नहीं आया पहले, पहले करिया का लफ्ज आया। जब उनके बुखल की बात की गई तो करिया का लफ्ज आया, और बुखल भी इंसान को ना देखें कहाँ तक पहुंचा देता है, कि रहती दुनिया तक उस बस्ती का जिक्र ऐसे ही चलता रहेगा कि वो उन्होंने मेहमान नवाजी नहीं की, मेहमान नवाजी नहीं की। कहते हैं बाद में इस बस्ती वाले लोग भी कोई आए और उन्होंने आके कहा भी कि कुरान के अंदर ये है बात, तो इसको जरा कुछ इस तरह से कर दिया जाए, लेकिन ये कुरान है, ये तो नहीं बदल सकता। पशेमानी उनको हुई। लेकिन देखें बुखल खैर को दूर कर देता है। अब वो कितने बड़े खैर के बाइस थे खिजर और मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन उन्होंने उनकी उनकी बरकतें और उनकी खैर वो पा नहीं सके। अब ये उन्होंने जो हाँ, ये जो करिया की वहां पे लफ्ज आया, जो बस्ती छोटे से गांव को कहते हैं करिया, और मदीना शहर को कहते हैं। जिस वक्त उनके बुखल की बात थी तो अल्लाह ताला ने करिया फरमाया, और जब वो दो यतीम लड़कों की बात आई तो शहर कहा, ने उसको भी एक तरह से उसकी भी वैल्यू बढ़ा दी, उसकी भी उसको भी अपग्रेड करके बताया गया। तो वकाना, अच्छा गुलामे नहीं यतीम नहीं, फिल्म मदीन वकाना तहता हूँ कंजुल्लाहुमा, तो उन उसके नीचे दीवार के नीचे उनका खजाना था, उनका बाप उनके लिए खजाना छोड़ गया था। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई इंसान अपनी औलाद के लिए खजाना भी छोड़ के जा सकता है, यानी अगर कोई अपने बच्चों के लिए पीछे कुछ छोड़ जाए तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि आप अपने बच्चों को गनी छोड़ के जाएं। वो क्या ना अबूहुमा सालेहा, और उनका बाप नेक आदमी था, इस वजह से अल्लाह ताला ने फरादा रब्बू का तो इरादा किया तेरे रब ने, अयबलुगा अशुद्धा हुमा के वो बड़े हो जाएं अपनी अशुद्धा हुमा से मतलब है बलुगत भी है। और बाज ने कहा, जैसे हम पहले सूरह निसा में भी यतीमों की बात पढ़ चुके हैं, तो एक सवाल आया था कि बालिग मसलन कोई 10 साल का बालिग हो जाता है तो क्या उसको उसका माल दे दिया जाए, तो अशुद्ध से बाज ने मुराद लिया कि नहीं, जब वो स्ट्रोंग हो जाए यानी समझ बूझ आ जाए, अकल आ जाए जिस्मानी तौर पे भी और यानी अकल में भी समझ आए, जिसको कहते हैं मेच्योरिटी की एज को पहुंच जाए, हैंडल कर सकते हैं अपने मामला को, तो जब वो मेच्योर हो जाए, वह यस्तखरिजा कंजहुमा, तो वो दोनों निकाल लें अपने खजाने को। ये रहमत थी तेरे रब की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से रहमत थी कि अल्लाह ताला ने उनके साथ रहम का मामला फरमाया। क्यों? वकाना अबूहुमा सालेहा, क्योंकि उनका बाप नेक आदमी था। सूरह निसा में नहीं आता, बल यख्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम, अगर अगर कोई तुम में से कोई औलाद छोड़ जाता है, तुम उसके बारे में डरते हो ना कि आई मेरी औलाद का क्या होगा, वल्या तकुल्ला वल्या कुलू कौलन सदीदा, तो क्या उसको करना चाहिए, वो तकवा इख्तियार करे यानी नेक खुद बने और सीधी बात करे, यानी अपनी जुबान की हिफाजत करे, अपनी जुबान को स्ट्रेट रखे, तो अल्लाह ताला उसके लिए खुद ही उसके बच्चों की हिफाजत करे। ये तो इंसान को होता है ना, कौन संभालेगा मेरे बच्चे, हाय मेरे पीछे बच्चे वो कौन देखेगा, सब डरते हैं इस बारे में। तो इसका हाल ठीक है, आप बच्चों के लिए अकाउंट तो भर के छोड़ जाते हैं, लेकिन उसका क्या पता वो जाया हो जाए, लेकिन असल बात क्या है, तकवा इख्तियार करें, पहले खुद नेक बने। अगर आप नेक होंगे और आप अपनी इस सूरह निसा में तो जुबान की हिफाजत और नेकी की बात है ना, अगर आप नेक होंगे खुद और अपनी जुबान की हिफाजत करते होंगे तो अल्लाह ताला आपकी औलाद की हिफाजत करेगा, उनके सरमाए की भी हिफाजत करेगा। वरना अगर आप खुद नहीं नेक होते तो हो सकता है पीछे लोग लूट खसूट ले, इतने लोग यतीमों के माल को लूट लेते हैं, अच्छे भले माशरों के अंदर देखें क्या आज हालात चल रहे हैं, और ये तो वैसे ही एक बखील बस्ती थी जो इतने कंजूस थे कि किसी को खाना खिलाने के भी रवादार नहीं, उनके हाथों में अगर खजाना आ जाता तो बिल्कुल ही ना इन बच्चों को देते। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम सूरह निसा से भी आप सबक लें और यहां पे भी, कि अगर आपको अपने बच्चों के लिए कभी भी डर लगता है तो खुद नेक बन जाए, खुद अपनी जुबान की हिफाजत करें और इसको घर से शुरू करें। माँ बाप एक दूसरे के साथ नेकी करें, माँ बाप एक दूसरे के साथ दरगुजर करें, खुदा खौफी के साथ मामलात करें, सिर्फ बाहर जाके नहीं घर में भी नेकी के साथ रहें, अल्लाह का डर रखें। लोगों के आगे तो हम बन जाते हैं, अपने घर में अपने बच्चों के आगे नेक बने, नेकी उनको नजर आए आपके अंदर, और जुबान सीधी रखें बच्चों के सामने भी, तो देखिएगा कि अल्लाह ताला आपके बच्चों की हिफाजत करेगा। तो इससे हमें ये लेसन मिल गया कि बाप की नेकी औलाद के काम आती है। इसी वजह से सईद बिन मुसैब बहुत बड़े एक ताबेई हैं, तो रात की नमाज पढ़ा करते थे, तो अपने बच्चे को करीब लेटा होता था तो उसको कहते थे, जब थक जाते थे ना जरा, तो कहते थे कि तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए है, यानी ये अपने बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए। हम बेटर फ्यूचर के लिए कितनी जगह इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कितनी जगह कहीं पॉलिसी लेते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम खुद उसको हेल्प कर सकते हैं अपनी इबादत से, अपनी नेकी से, क्या हमने अपनी औलादों की बेटर फ्यूचर के लिए खुद अपनी इबादत को बढ़ाया, कयामुल लैल किया, अपने अखलाक दुरुस्त किए, अपनी जुबान को सीधा किया, अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत किया, या बस यही कहते रहते हाय औलाद नहीं को जा, औलाद नहीं को जा। उमर बिन अब्दुल अजीज कहा करते थे कि नेकी जो है सात पुश्तों तक जाती है, सात पुश्तों तक। यानी अगर हमारी सात पुश्तों में किसी ने नेकी की होगी ना, तो औलाद अगली नस्लों में असर आता है, नेकी के असरात होते हैं। आप ये देख लें यहाँ पे बाप नेक था तो असर आया ना, आगे असर आया, अल्लाह ताला ने फिर हिफाजत की है। तो इसलिए नेकी करेंगे तो आगे अल्लाह ताला हिफाजत करेगा बच्चों की, उनकी ना सिर्फ माल की, उनके किरदार की भी। पिछली वाली बात में भी देख लें क्या है नेकी। अच्छा, आप तीनों किस्सों में एक चीज आप कॉमन देखेंगे, क्या चीज है कॉमन तीनों में? पहले किस्से के अंदर वो मिस्कीन थे मगर उन्होंने नेकी की है ना, तो अपनी चीज को बचा लिया। फिर नेक वालदेन थे तो अल्लाह ताला ने उनकी औलाद को बचाया, यानी ये एक फौत करके दूसरी दी, जिस यानी उनकी उनके दीन ईमान को, उनकी औलाद को बचा लिया। जब फौत हो गया वो भी बच गया ना, वो तो छोटा ही फौत हो गया, उसका तो कोई अब गुनाह नहीं, और इनके दीन ईमान को भी बचाया और इनको नई औलाद दे दी तो बचा लिया। अब और इसी तरह यहां पे यतीम बच्चों के खजाने को बचा लिया इनके नेक बाप की वजह से। तो कॉमन चीज क्या हुई? अपनी नेकी, अपने आप से हम स्टार्ट करें। तो उन्होंने कहा ये मैंने अपने पास से नहीं किया, वमा फालतू अन अम्री, ताकि मूसा अलैहि सलाम समझ जाएं कि ये मैंने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म से ही किया। इससे ये पता चलता है कि जो भी खजर अलैहि सलाम को ऑर्डर्स आए थे उन्होंने उनके मुताबिक काम किया। और कहीं हम ये नहीं देखते कि नबियों को ऐसे ऑर्डर्स आ रहे हो कि वो कभी किसी को कत्ल कर दें, कभी किसी की दीवारें से ही कर लें, कभी किसी के मतलब कश्ती को खराब कर दें, माल का नुकसान कर दें। ऐसे तो हमने कोई भी नहीं नबियों को देखा, तो ये फरिश्ते होंगे। और सुभान अल्लाह, उलमा ने बहुत ही खूबसूरत एक और बड़ा प्यारा नुक्ता इसके अंदर बताया। उन्होंने कहा कि देखें, अगर आप मूसा अलैहि सलाम की जिंदगी को भी देखें ना, तो आपको इससे मिलते जुलते ही वाकयात मिलेंगे। ये जो तीनों स्टोरीज है ना, ये मूसा अलैहि सलाम की जिंदगी में भी इस तरह की चीजें आई हैं। पहली चीज जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन की है, उन्होंने कहा कि ये आपने इस तरह कर दिया, इससे तो गर्क हो जाएंगे सारे, सारे डूब जाएंगे। तो वो भी देखें कि वो उनको भी जब उनकी माँ ने एक बास्केट के अंदर डाल के और दरिया में छोड़ दिया था, तो वो डूबे नहीं थे, अल्लाह ने उनको भी तो बचा लिया था, तो अल्लाह इनको भी बचा लेगा। सुभान अल्लाह। हाँ, और दूसरी, वो लड़का कत्ल हुआ जो बाद में जाके सरकशी करने वाला था, तो आपके हाथ से भी कबती कत्ल हुआ था जो काफिर और सरकश था, मगर इसके लिए इस वजह से, इस कत्ल की वजह से आपके लिए खैर का दरवाजा खुला कि आप वहां से निकले और फिर जाके अल्लाह ताला ने आपको ट्रेन किया और आपकी शादी कराई और आपको कर दिया और आपको क्या कुछ नहीं, वो जो वहां पे महलों में बैठ के नहीं वो ट्रेनिंग हो सकती थी। तीसरे वाक्य में देखें, अब वो कह रहे हैं कि आपने चार्ज क्यों नहीं किया, उजरत क्यों नहीं ली इनसे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तो जब दो लड़कियों को की बकरियों को पानी पिलाया था, तो उन्होंने भी तो उजरत नहीं ली थी। हाँ, तो उनके लिए भी तो फ्री में काम किया था। तो खैर, गौर करें तो जिन चीजों पे उन्होंने सवाल उठाए थे वैसे ही वाकयात उनकी जिंदगी में गुजर चुके थे, लेकिन हर जगह मूसा अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन ही नतीजा देखा ना, कि कितना पॉजिटिव नतीजा आया हर चीज में। ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا, ये है हकीकत उसकी जिसकी तुम इस्तात नहीं रख सके सबर करने की। ये उन सारों की डिटेल बता दी गई। तो खुलासा क्या हुआ, अगर आप खुद नेक हैं तो फिर कोई चीज आपको नुकसान नहीं दे सकती, फिर हर अल्लाह का फैसला जो है ना वो आपके हक में ही है, ये आप यकीन कर लें। अगर आप खुद नेक हैं, आप खुद भलाई पे हैं, तो चाहे कोई हादसा जिंदगी में आए, चाहे कोई मसला आए, चाहे कोई नुकसान हो, चाहे किसी कोई प्यारा बिछड़ जाए, कोई बीमारी आ जाए, मगर फिर ये यकीन रखें कि मेरा अल्लाह मुझे छोड़ता नहीं है। एज लॉन्ग एज आपका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होना चाहिए, ये नहीं हो कि भाई ताल्लुक ही नहीं है और कहीं और ही, फिर तो सजा के तौर पे भी चीजें आती हैं। अगर ताल्लुक मजबूत है ना, तो बाज लोग बहुत फिर कहते हैं हमारा तो अल्लाह से ताल्लुक बड़ा मजबूत, हम तो ये भी करते हैं, हमारे ऊपर क्यों मुश्किल आ गई, तो क्यों परेशान हो रहे हैं। पर इस यकीन कर लेना कि इसमें भलाई है, इस मुश्किल के अंदर, इस बीमारी में भलाई है, इस जुदाई में भलाई है, मतलब फिर उसके पीछे कोई हिकमत है, कोई खैर है, चाहे मुझे समझ नहीं भी आती तो कोई बात नहीं है। और ये समझ जाए कि अल्लाह ताला मेरी टेक केयर करेगा, बेफिक्र हो जाए, गम ना करें, फिर बिल्कुल डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, परेशान ना हो, ये क्यों हुआ, हाय क्यों हो गया, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्यों, इसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, बच्चों का मेरे क्या होगा, फलान का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा, अब तो ये सब गलत हो गया, कश्ती टूट गई, अब कारोबार का क्या होगा, आए औलाद ऐसी निकल आई, अब क्या होगा, आए इसका क्या बनेगा, उस मैं मर गया तो फिर मेरे बच्चों को पीछे कौन देखेगा, सब चीजों की फिक्रें छोड़ दें, बस अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत कर ले, वो अब आपके सारी चीजों का जिम्मेदार है, वो बस फिर उसने देखना सारे आपके कामों को, जब तक जिंदा है तब भी, और जब नहीं हो जिंदा रहेंगे तब भी वो देखेगा। तो मत डिप्रेस हो, मत इसके ऊपर परेशान हो, फिर ये समझ जाएं कि फिर रब का हर फैसला मेरे लिए बेहतरी के लिए ही है, हर फैसला चाहे वो बजाहिर देखने में कैसा ही क्यों ना हो। फिर अब यहां पे देखें सुभान अल्लाह, एक और बात ये देखें, जब उन्होंने कहा ना कि कश्ती में ऐब डालने की बात की, तो आयत 79 में फअरदतु, मैंने चाहा, लेकिन जब खैर की बात आई तो फअरदना और फअरादा रब्बू का ये आया, ये अदब है, अदब इसको कहते हैं, कि जब इंसान खैर की बात करे तो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करे, और जब शर की बात करे तो उसकी निस्बत अपनी तरफ करे, ये खादिर अलैहिस्सलाम ने इस तरह से कहा। और हमने अपने उस्तादों से भी यही सुना है कि हमेशा वो यही कहते थे कि जब आपको हमारी तरफ से कोई खैर की बात मिले तो वो अल्लाह की तरफ से, जो कोई गलत बात हो गई हो, भूल चूक हो गई, तो हमारी अपनी कमजोरी है। तो देखें ये अदब है कि इंसान अल्लाह ताला की तरफ शर मंसूब ना करे, अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने क्यों ये उसको कर दिया, उसको क्यों नहीं खाना दिया, उसकी मदद क्यों नहीं की, अल्लाह क्यों नहीं सुना उसका, ये उसको वो परेशान था, उसको क्यों नहीं देखा, उसको ऐसे क्यों, जो ये सारे एतराज अल्लाह की तरफ करना अदब के खिलाफ है। देखिए हम दुनिया में तो बड़े मैनर्स के साथ लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला सबसे ज्यादा इस काबिल है कि उसका अदब किया जाए, उसकी जात से बढ़ के और कौन हो सकता है अदब के काबिल, लेकिन उसके बारे में बात करते हुए हम ऐसे ही जो मर्जी बोल देते हैं। आप अल्लाह के बड़े पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सीखे, वो कहते हैं वइदा मरितु फहुवा यशफीनी, जब मैं बीमार होता हूं तो वो मुझे शिफा देता है, हालांकि बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है और शिफा भी अल्लाह की तरफ से आती है, ये नहीं कहते अल्लाह जब तू मुझे बीमार कर देते ना तो फिर तू मुझे शिफा देता है, या अल्लाह मुझे बीमार करता है, नहीं, जब मैं बीमार हो जाता हूँ। तो अदब कहाँ गए हमारे। फिर हमें इल्म की अहमियत पता चलती है कि इल्म की कितनी बड़ी अहमियत है, कि एक अल्लाह का पैगंबर भी है तो वो चल पड़ा इल्म लेने के लिए। कहते ना पहले कहा करते थे नॉलेज इज पावर, और वाकई आज जब उम्मत मुस्लिमा ने इल्म लेना सीख छोड़ दिया तो हमारे हालात क्या हो गए, आज वही कौमें दुनिया में आगे हैं जो इल्म के मैदान में आगे। तो एक बड़ी वजह हमारी जवाल की, जहां और बहुत सारी वजूहत है, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि इल्म के मैदान में हम पीछे रह गए, हमने इल्म को वो कदर ही नहीं दी, इल्म को हम उसकी वो अहमियत ही नहीं जानी। ठीक है, तो फिर हमें ये भी पता चलता है इल्म सीखना सिखाना बेहतरीन काम है, मूसा अलैहिस्सलाम ने सिखाते भी थे और सीखने के लिए भी निकले, और कभी ये ना सोचे कि मेरा इल्म काफी हो गया, और फिर हमें पता चला कि इल्म सीखना आसान नहीं है, इसमें मेहनत करनी पड़ती, कंफर्ट छोड़नी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने थकन भी उठाई, मेहनत भी की, घर बार भी छोड़ा, और इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि शैतान इंसान को भुला देता है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो खास तौर पे खैर के काम होते हैं, तो अल्लाह की पनाह ले लेनी चाहिए। और फिर आप ये भी देख लें कि जब इल्म हासिल करने लगे तो चाहे आपसे कम स्टेटस का बंदा क्यों ना हो, वो एक गरीब आदमी है, वो आपसे कम है स्टेटस में, उसका मर्तबा कम है, फिर भी उससे इल्म हासिल कर सकते हैं, उसमें अपने लिए कोई बेइज्जती ना समझे। जैसे खिजर से ज्यादा बुलंद मुकाम मूसा अलैहि सलाम का है, मगर वो इल्म का मामला आया तो उन्होंने ये नहीं सोचा। बुखारी तो कहते हैं कि तुम कभी मुअज्जज नहीं हो सकते जब तक कि उनसे इल्म सीखने को तैयार ना हो जो तुमसे ऊपर है और जो तुम्हारे साथ वाले हैं और जो तुम्हारे से नीचे हैं। तो इंसान, कोई स्टूडेंट भी कोई बात कर दे जिससे वो उस्ताद सीख सकता है, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। हाँ, मैं उस्ताद हूँ, ये मुझे सिखाएगा, उसने कोई ऐसी बात की है जो कि जरूरी नहीं है कि उस्ताद का भी इल्म कामिल हो। कोई इस दुनिया के अंदर उस्ताद भी ऐसा नहीं है जो कह सके मेरा इल्म कामिल है, मैं तो सारा कुछ जान गया। नहीं, एक फील्ड में कोई जानता तो दूसरे में नहीं होगा, दूसरे में होगा तो तीसरे में नहीं होगा। हर एक चीज का माहिर नहीं हो सकता, कोई भी नहीं है। और हमेशा याद रखें, इल्म की निस्बत हमेशा अल्लाह की तरफ करें। मूसा अलैहि सलाम ने जब नहीं की तो अल्लाह ताला ने उनको फिर एक सिखाया इस तरह से, ठीक है। और नफामंद इल्म वही है जो हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इनको लिखते जाएं आप, फिर आपको सबर की अहमियत पता चली। आपसे सब ने फरमाया ना, कोई सबर से बेहतर कोई तोहफा नहीं है जो किसी को मिला। वो सबर बहुत बड़ी चीज है जो किसी को मिल जाएगा, तो सबर करना पड़ता है, चाहे इल्म का रास्ता है, चाहे घर में है, आप अपने शौहर के साथ सबर करना पड़ता है, बच्चों के साथ सबर करना पड़ता है, आप बाजार में जाते हैं सबर, एयरपोर्ट पे जाते हैं सबर, सफर में सफर सबर कितना पड़ना पड़ता है। सफर में लोग बाज़ हंगामे शुरू कर देते हैं, या अपने घरों में सीन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, बस छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा बना देते हैं, फिर जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, ये भी सब्र के साथ ही है ना, जल्दबाजी नहीं करें किस चीज में भी, चाहे वो इल्म लेना हो, चाहे वो किसी को के साथ मामला करना हो, उसमें जल्दबाजी ना करें। फिर अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें अगर कोई गलतफहमी में या बदगुमानी कर सकता है आपके बारे में, फिर भूल चूक अगर किसी से हो जाए ना तो प्लीज उसको माफ कर दिया करें। फिर ये भी हमें पता चलता है कि कोई हरज नहीं है, अगर हम समुंदर का सफर करते हैं तो समुंदर के सफर कर सकते हैं, अल्लाह के नबी ने किया, मूसा अलैहि सलाम ने। इसी तरह लोग अगर माफी मांगे तो उनकी माफी भी कबूल कर लेनी चाहिए, उनकी गलतियों को दरकुस कर देना चाहिए। हमें यह भी पता चलता है कि देखिए, अगर किसी के साथ आप नहीं चल सकते तो इतनी हद तक मामलात ना लेकर जाएं कि वो बहुत एक्सट्रीम बात चली जाए, बल्कि पहले ही फिर एक दूसरे से जुदाई ले लें। फिर यह भी हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला कभी किसी पे जुल्म नहीं करता, कभी नहीं जुल्म करता। पहले भी ये बात कुरान में भी आ चुकी है और यहां से भी हमें पता चलता है कि बाज दफा चीजें अगर देखने में समझ नहीं आती और आपको लगता है ऐसे कि ये जुल्म है, तो भी अपने आप को कहें ये जुल्म नहीं है। अच्छा, मैं हैरान होती हूँ, देखें सुभान अल्लाह, लोग अपने लीडरों के पीछे, सियासतदान है इस तरह, उनके पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं कि हक को भी नहीं देखते। कहते हैं हमारा लीडर चाहे गलत भी कह रहा ना, उसकी भी जस्टिफिकेशन देते हैं, कहते हैं नहीं ये सही है, उसकी भी कोई ना कोई तावील निकाल लेते हैं उसको जस्टिफाई करने की। लेकिन ये वो तो इंसान है, वो तो गलती कर भी सकता है, कोई भी हरफे आखिर नहीं है, हर एक से गलती हो सकती है, सब इंसान है। लेकिन उस मामले में हमें कितने सेंसिटिव हैं कि हम किसी को भी अपने लीडर के बारे में कोई बात सुनने को कह दें, वो नहीं सुन पाता और उसकी तावील उसके पास पहले से होती है। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला को क्या इतनी भी अहमियत नहीं देते जितने आप अपने सियासतदानों को देते, अपनी पार्टियों को देते हैं, जिस जिस पार्टी के साथ आप खड़े होते हैं। कि अल्लाह ताला का मामला आता है तो कभी ये नहीं कहते कि नहीं ये हुआ है तो इसके पीछे भी कोई बात है, उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन दे दें, उसकी भी कोई लॉजिक दे दें, या फिर नहीं दी जाती कहीं पे भी कुछ नहीं, कत्ल के मामले में नहीं दी जाती, तब भी कहते हैं अल्लाह ने इसमें खैर ही रखी, खैर ही है इसके अंदर, बियदिकल खैर, उसके हाथ में खैर ही खैर है। क्यों नहीं ये कह देते कि कद्दर अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो तकदीर में फैसला कर दिया वो ही है, जो चाहे वो फैसला करे। माशा अफाल, जो उसने चाहा किया। हम कौन होते हैं इसके बारे में कोई सवाल करने वाले। और हाँ, ये भी हमारा एक सब्जेक्ट होता था मकासिद शरिया का, जब मैं पढ़ती थी तो उसके अंदर हमें यही सिखाया गया था कि शरीयत के अहकामात को अगर आप समझ सकते हैं ना, उनकी हिकमतें, तो जरूर समझें। ये आपको हेल्प करती हैं, आपके दिल को मुतमईन करने में हेल्प करती हैं। तो अगर आपको हिकमत समझ आ जाती है, तो ऐसा ना करें हमने नहीं हिकमत समझनी, ये ना कहें। अगर समझ आ जाती है तो जरूर समझें उसको, क्योंकि ये आपको दावत के मैदान में भी हेल्प करता है। जब आप किसी को दावत देने जाते हैं ना, तो वो आपसे इसी किस्म के सवालात करेंगे कि ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, वो क्यों है, ये क्यों फिर हो गया, ये क्यों हुक्म आया, तो फिर आप उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी है, तब भी हमने मानना, हमने फिर भी कहना समय ना माताना। लेकिन अगर समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, कभी इस चीज में पीछे ना रहे कि नहीं मुझे नहीं कोई हिकमत समझ में आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी हमारा तकदीर तो पर तो ईमान है ही, क्योंकि उसके बगैर ईमानियात ही मुकम्मल नहीं होते। एक जो जिन जिन जो जिन चीजों पे हमारा ईमान लाना जरूरी है, वो 6 चीजें हैं, उनमें एक चीज तकदीर पर ईमान भी है। तो जब भी आप की जो चीज आपके मुताबिक आपने सोची और उस तरह से नहीं हुई, उस तरह से आपको नहीं समझ में आया, जैसे आप मूसा अलैहि सलाम आगे चले गए, जैसे उन्होंने प्लान किया था वैसे नहीं हुआ। उनकी तो प्लानिंग ये थी ना कि भाई हाँ मछली जाएगी तो हम वहां पे उतर जाएंगे और वहां पे ही वो मिल जाएंगे, तो वहां से तो उनको नहीं वो मिला जो कि उन्होंने सोचा हुआ था, जैसे प्लान किया हुआ था। इतनी आगे जाना पड़ा, फिर वापस आना पड़ा। तो कद्दर अल्लाह माशा माशा अफा, कद्दर अल्लाह, अल्लाह ताला ने इसी तरह लिखा था, माशा अफा, जैसा वो चाहे वैसे कर। तो तब इंसान को इस चीज के ऊपर होना चाहिए, उसके ऊपर भी वाबेला नहीं, उसके ऊपर भी ये नहीं कि ये क्यों हो गया, हमने ऐसे सोचा, हमने ये प्रोग्राम बनाया, ये क्यों इस तरह से हो गया, हमारे हाथ से क्यों निकल गया। और फिर बुखल के नताइज भी आपने देखे लिए। अच्छा, फिर एक और बात इसमें पता चलती है कि नेक लोगों के मरने के बाद उनकी यतीम औलाद का ख्याल भी रखना चाहिए। ये आपका उस शख्स को ऑनर देना होता है, ये नहीं कि जब तो वो जिंदगी जिंदा है उस वक्त तो उसकी तारीफें और उसके साथ लगे रहे, जब वो मर गया बेचारा तो उसकी औलाद को देखा ही नहीं। तो जो नेक लोग हैं उनकी औलाद को भी देखना चाहिए बाद में भी। और बाज लोगों ने ये कहा कि खजर अलैहि सलाम ने भी तो ये काम किए थे जो बड़े जुल्म के थे, तो वो आज अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह गलत कामों को ये कह के करते हैं कि जिना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो इसलिए कि खजर अलैहि सलाम ने भी तो गलत काम किए थे। तो ये शैतानी बात है, उन्होंने खुद फरमाया। ये बात एक सबूत है कि कोई भी चीज वो अपने उससे नहीं कर रहे थे, वमा फालतू अन अमरी, मैंने खुद नहीं अपने पास से किया, ये सब अल्लाह के हुक्म से है और अल्लाह ताला की रहमत, रहमत उम्मे रब्बी का से पता चलता है कि अल्लाह ताला की रहमत आती है जब इंसान नेक होता है। अब कोई अगर ये कहे बाप की नेकी का तो बच्चे को फायदा हुआ, क्या माँ की नेकी का भी होगा, तो उससे पीछे आप माँ बाप दोनों की नेकी का भी तो देख रहे हैं ना। दोनों की नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने उनके लिए खैर कर दी, उनका दीन ईमान बचाया। दीन ईमान से बड़ी क्या बात हो सकती है, माल से ज्यादा बड़ी तो नहीं ना, दीन ईमान से ज्यादा बड़ी तो नहीं ना चीज माल, माल तो छोटी चीज है, अल्लाह ताला ने उनका दीन ईमान बचा लिया, इतनी बड़ी बात है ये उन दोनों की वजह से, नेक होने की वजह से। तो अल्लाह ताला माँ बाप की नेकी की वजह से उनकी औलाद को जरूर देता है रिवॉर्ड। और किसी साले की कंपनी में रहना, वो भी आपने देखा, उससे भी इंसान इल्म सीखता है। फिर आपने ये भी देखा कि बच्चों के मामले में भी हमें केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे हमारे पर असरअंदाज हो जाए, इम्पैक्ट करें और हमारा दीन कमजोर कर दें, हमें दीन में पीछे ले जाएं, या अल्लाह ताला की नजरों में हमें गिरा दें। और हमने ये भी देखा है कि जो इल्म वाला होता है और बे इल्म के दरमियान फर्क होता है, और इसके अंदर हमें देखना चाहिए कि जब हम इल्म ले रहे हैं तो इसके असरात हमारे ऊपर होने चाहिए। और फिर इब्ने बकाल ने लिखा है कि इस किस्से में सबक है कि कभी अल्लाह ताला के फैसले को अपनी अकल पे ना परखें। इसलिए कि अकल बेचारी क्या, अकल तो इतनी लिमिटेड है ना, अकल तो कहेगी क्यों सुराख किया, हाय बच्चे को क्यों मार दिया, हाय क्यों दीवार खड़ी करने के लिए खड़ी। लेकिन अकल नहीं समझ सकती हिकमतों को, तो कभी अपनी अकल के ऊपर ना फरकें अल्लाह ताला के किसी हुक्म को या उसके किसी फैसले को। अब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तब भी उसको अपनी अकल के ऊपर अल्लाह के हर हुक्म को हम परख रहे होते हैं। इसीलिए तो फिर क्या देते हैं, ये नहीं मेरी अकल में आता, ये नहीं मुझे समझ आ रहा, ये मुझे नहीं पता क्यों ऐसे हुआ। नहीं है, तो आप अकल में क्यों परख रहे हैं, या आपको यकीन नहीं है अल्लाह ताला के अलीम और हकीम होने पर। तो ये यहां से हमें इन किस्सों से पता चला कि अगर इन किस्सों में भी अकल पे परखते ना, तो अकल ने तो कहना था सब कुछ ही गलत है। और अल्लाह ताला की जो सारे दुनिया के अंदर मामलात चल रहे हैं, ये जाहिर में कुछ नजर आता है और बातिन में क्या है वो अल्लाह ताला ही जानता है। और हमें समझना चाहिए कि इसका बातिन भी कोई है, इसके पीछे भी कोई चीज है। ठीक है, अच्छा ये भी एक बात है कि उलमा ने लिखा है कि इन मसाकीन ने वो उन बुजुर्ग हस्ती का एहतराम करते हुए उनसे किराया वसूल नहीं किया, तो उलमा कहते हैं ये भी जायज है, अगर कोई इस तरह किसी के साथ नेकी करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और उनका इस नेकी को उनसे ले लेना भी कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने नहीं ये कहा कि नहीं हम किराए के बगैर दिए बगैर बैठेंगे ही। और खिजर अलैहिस्सलाम की हिकमत देखेंगे, उन्होंने कैसे डील किया था बादशाह के साथ। ये नहीं कि फरमाया गया मूसा चलो अब हम इस बादशाह के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं, बल्कि कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया और मसाकीन की मदद भी कर दी। फिर हमें ये भी पता चलता है, देखिए एक जगह पे मूसा अलैहिस्सलाम ने इमरा कहा, दूसरी जगह पे नुकरा कहा, तो यानी गुनाह भी एक दर्जे के नहीं होते। जो गलत काम भी होते हैं ना, वो एक दर्जे के नहीं होते, कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं। एक जगह पे सुराख किया जहाज में, तो वो तो ठीक है, कश्ती में सुराख किया तो वो एक गलत काम उनकी नजर में था और एक गुनाह का काम उनकी नजर में, उनकी शरीयत में था, लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह का काम कत्ल था। इसीलिए तो उन्होंने उससे ज्यादा बड़ा रिएक्शन दिखाया कि ये क्या आपने किया, तो एक बराबर के नहीं है वो, इसीलिए उनका वर्ड्स भी डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि कत्ल जो है वो किसी का कर दिया जाए तो जान वापस नहीं आ सकती, जो इमलाक है जो माल है वो तो फिर भी वापस आ सकता है, कश्ती तो फिर भी फिक्स हो सकती। अच्छा, अगर इसी तरह अगर कोई इंसान गलती करता है ना, तो उसको पहली दफा में ही उसकी गलती पे छोड़ ना दे, उसको चांस दे, जैसे खजर अलैहिस्सलाम ने चांस दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद ही कह दिया था, तो फिर चले गए वो। अच्छा, ये इतने ही सबक मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है। अल्लाह ताला हमें इससे जो इतना भी हमने सीखा है इसको याद रखने की हमें तौफीक अता फरमाए, इसको अप्लाई करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इल्म के तकब्बुर से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें अपने कामों की हिकमतें सुझा दे, और जो नहीं हिकमतें हमें पता अल्लाह ताला उनके ऊपर भी हमें सबर करने वाला बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً